ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा क्यों आए हैं? आज बाबा ने और अर्थ बताया है। रोज बाबा के भिन्न भिन्न महावाक्यों में भिन्न भिन्न बातें सुनते हैं। बाबा क्यों आए हैं? आज बाबा ने कहा है, सब बेसमझ हो बन गए हैं। सब बेसमझ है, सारी दुनिया बेसमझ है। तब दुनिया में तो मनुष्य क्या समझते, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सब बेसमझ है। क्यों बेसमझ है? क्योंकि न खुद को जानते, न परमात्मा को जानते, न अपने कर्तव्य को जानते। देह अभिमान में है, तो बाबा कहते हैं जो देह अभिमान में है वो बेसमझ है। तो बाबा कहते हैं इस बेसमझी के कारण दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है। तो बाबा आकर के हमको समझ देते हैं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। नेत्रहीन थे हम, ये आंखें तो थी लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं था। तो बाबा आकर के वो ज्ञान का नेत्र देते हैं, जिससे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान जाते हैं, और जान करके फिर उसी अनुसार जो भगवान हमें कहते हैं वो हम पुरुषार्थ करते हैं। तो आज भी बाबा ने कैसे बाबा आकर हमें तीसरा नेत्र देकर समझदार बनाते हैं। तो समझदार का काम क्या होता है? हर बात सोच समझ कर करे। अगर यूं ही कर लेते हैं तो बिना समझे तो फिर पाप का बोझा चढ़ता है, फिर दंड मिलता है। तो आज बाबा ने वो समझ हम बच्चों को दी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 18/10/2025 है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। सब आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं ना। बाबा की मुरली सुनते समय हम आत्म अभिमानी होकर बैठते हैं। बाबा कहते अटेंशन प्लीज। तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो। क्या घोटो? अभी गीत सुना ना, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। ये अंदर में घोटो। तो अंदर में घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो, तो समझदार बन जाएंगे। समझदार बनने की युक्ति, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ यानी नियम को अच्छी रीति समझते हैं? बेहद का नाटक हमने समझ लिया, त्रिकालदर्शी बन गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? कौन सा ऐसा नियम है इस बेहद के नाटक का? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हरेक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है। सदा कोई भी शांति धाम में नहीं बैठ सकता, ये लॉ नहीं है। उसे तो फिर पाठधारी नहीं कहेंगे, अगर वो सृष्टि मंच पर नहीं आती आत्मा तो वो पाठधारी कैसे हुए? पाठधारी एक्टर उसको ही कहेंगे ना जो मंच पर एक्टिंग करे, पाठ बजाए, उसे तो पाठधारी नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। दुनिया वाले कहाँ जानते हैं कि आत्मा एक्टर है तो उसको आना ही है, वो समझते पर मोक्ष मिल जाए वापस नहीं आई। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, सब आत्मा अभिमानी होकर बैठे, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। क्या, कौन सी बात सच कहते हैं? कि हम आत्मा बेसमझ बन गई है, ये सच्ची बात है, सब बेसमझ बन गए हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ बे अभिमान में फंस पड़ा हूं। अब ये समझ नहीं है ना हमें, तो बेसमझ ठहरे ना। बे अभिमान में फंसना ये सबसे बड़ी बेसमझी है। तो बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं बे अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा ते ही अभिमानी बनते हो तो क्या हो जाता है? देही अभिमानी बाबा द्वारा बनते हैं तो बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल समझदार बन जाते हो। देही अभिमानी बनना माना समझदार बन जाना। कोई तो बन गए हैं, अब बच्चों में बाबा देखते हैं कोई तो बन गए हैं समझदार, क्योंकि वो देही अभिमानी रहते हैं। कोई फिर पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। सत्युग त्रेता में तो बहुत समझदार थे, आत्माभिमानी थे, भल परमात्मा अभिमानी नहीं थे। बाबा कभी कभी कहते रॉयल बुद्धू थे, ये ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा के तो समझदार बहुत थे। अगर लक्ष्मी नारायण समझदार न होते तो सारे विश्व पर कैसे राज्य करते? लेकिन यहां से वो समझ बाबा से ली है तब जाके विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। तो आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। बे अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। कितने गिर गए? पूरा देह अभिमान, स्वदेह अभिमान के कारण सारे विकारों से भरपूर हो गए। तो देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम कितना गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। केवल समझ मिलने से नहीं होगा, उसको पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े। कोई भी गुण नहीं है हमारे में, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। सब बच्चे भी पूरा नहीं समझते इस खेल को, नंबर वार समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए, कितनी मूलियां हमने सुनी होगी, लेकिन जब भी मुरली सुनते हैं, जैसे नित्य नई मुरली लगती है, नई बातें मिलती हैं, तो समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पुराने बाबा कहते पुरानों से जो नए है वो अच्छे समझदार बन जाते हैं, बहुत जल्दी पुरुषार्थ करते हैं, तो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए बाबा नयों की कितनी महिमा करते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई ये तो बिल्कुल समझाई नहीं है, भले कहते हैं बाबा बाबा पर समझाई नहीं है, बेसमझ के बेसमझ ही रहे हैं। देखो बाबा ये कौन कह सकता है, अथॉरिटी कह सकता है ना, क्योंकि बाबा की नजरों में हम अगर हम पुरुषार्थी नहीं बनते, पुरुषार्थ नहीं करते तो बेसमझ ही हुए ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई ये तो बिल्कुल नहीं समझाए, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए हैं समझदार बनाने, बच्चे समझते हैं कि क्यों बेसमझ बन गए, बाबा कारण भी बताते हैं। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए, जब से माया प्रवेश हुई द्वापर युग से, तब से बेसमझ बनना शुरू हुए। तो माया के कारण हम बेसमझ बने हैं, हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बन बने हैं, बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इनका दुनिया में किसको भी पता नहीं कि इस सृष्टि पर देवी देवता धर्म था। बाबा कहते इसका इस दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। अब कोई राजा हो और एकदम बुद्धू हो वो क्या राज्य करेगा, इसीलिए सब उसके ऊपर ये राज्य करेंगे, वो क्या कर पाएगा, तो राजा को तो बहुत समझदार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत् तुम भी ऐसे समझदार बनो तो तुम भी राज्य करेंगे। तत् तुम भी अपने लिए ऐसे समझो, ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है, सबको महसूस होता है, क्या महसूस होता है कि बाप ही ऊंच से ऊंच समझदार से समझदार हुआ ना, जो औरों को समझदार बनाने वाला है वो खुद कितना समझदार होगा। तो बाबा स्वयं शिव बाबा कितना समझदार, इतना समझदार है, इसलिए बाबा कहते हैं वो एक तो ज्ञान का सागर भी है, फिर सर्व का सदगति दाता भी है। इतनी समझ भगवान की है जो ज्ञान भी देते हैं, सबकी सदगति भी करते हैं, फिर पति पावन भी है, कितनी समझ चाहिए इन सब के लिए, पति पावन भी है, ये एक की ही महिमा है। इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहकर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। सचमुच आप जो बाबा की मुरलियां सुनो ना, अगर टेप में भी सुनते हैं तो हर वाक्य के पीछे बच्चे 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 बच्चे, तो अगर वो सारे बच्चे बच्चे भी मुरली में लिखे ना तो दो तीन पेज तो केवल बच्चे बच्चे से भर जाएगा, इसीलिए वो फिर सब एडिट करना पड़ता। तो बाबा कहते हैं इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर बच्चे बच्चे के अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे अब पावन बनना है। बाबा जब कहते हैं ना बच्चे, तो ऐसे कहते बच्चे अब पावन बनना, ऐसे हाथ बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं, बच्चे अब पावन बनना है। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, पावन बनने की एक ही दवाई कौन सी है? कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। बाबा की याद एक ऐसी दवाई है जिससे हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, उस एक ही दवाई में सब बीमारियों का इलाज है। तो अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आई लगाते हैं। तो एक ही इंजेक्शन से हम इतने पावन शुद्ध बन जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। ऐसे भी नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, एक ही लाइन लेते हैं ना। अब स्कूल में है तो कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे कॉलेज में आते हैं तो फिर उनके सब्जेक्ट्स कम कम होते जाते हैं, और फिर एक ही सब्जेक्ट ले जाता है जब ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद तो फिर और एक का भी आधा, फिर उसके बाद और इस आधे का भी आधा। हाँ, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या पीएचडी करते हैं तो एक की गहराई में जाते हैं। तो इसी ऐसे में बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। जो जो पढ़ाई की, जो पद पाया, उस अनुसार लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। तो भगवान से सुख शांति मांगते हैं, इसके लिए कहते हैं पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, पावन दुनिया तो सत्यों को कहेंगे, क्योंकि पावन दुनिया की भेंट में पतित दुनिया है। तो इसलिए सत्यों को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे, क्योंकि उसके कंट्रास्ट में नर्क है जो पतित दुनिया है। तो ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं, सच्ची सच्ची शांति। बाबा कहते हैं इस दुनिया में अब हो ही नहीं सकती, सच्ची सच्ची शांति वहां की वहां ही है, उस शांति धाम में सच्ची सच्ची शांति है। क्यों वहां ही क्यों सच्ची सच्ची शांति है? क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि वह शरीर ही नहीं है। अब शरीर हो तब कहेंगे भाई शांति चाहिए, अशांति हो गई, अब शरीर ही नहीं है तो आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। वहां तो क्यों? क्योंकि वह शरीर ही नहीं है, तो उसको कहा ही जाता है शांति धाम। तो बहुत कहते हैं कि हम शांति धाम में ही रहे, परंतु लॉ नहीं है कि इस दुनिया में हम आए ही नहीं, क्योंकि यह अशांति है, इसलिए आना ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये लॉ ही नहीं है। वो तो पाठधारी नहीं हुआ, फिर मंच पर ही नहीं आए तो वो एक्टर कहां से कहलाएगा? वो तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी अब समझ गए हैं, जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे, घर में तो नहीं बैठेंगे पाठ बजाने लिए, स्टेज पर आएंगे तो घर से तो बाहर निकलेंगे ना स्टेज पर आने के लिए पाठ बजाने लिए, तो तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर में उनको ही कहा जाता है सर्व का सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले बाबा, सर्व को पावन बनाने वाला है, तो सर्व को पावन बनाने वाला कोई तत्व तो नहीं हो सकता है। अब ब्रह्म तत्व को ईश्वर मान लो तो वो ब्रह्म तत्व कैसे सबको पावन बनाएगा? परमात्मा तो हस्ती है ना, वो आते हैं सृष्टि मंच पर और आकर ज्ञान दे करके पावन बनाते, तो तत्व तो पावन नहीं बना सकता। तो बाबा कहते हैं सर्व को पावन बनाने वाले तत्व तो नहीं हो सकता, पानी आदि तो सब तत्व है ना, वो कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा ही बजाती है। इतने जो हठ योग करते हैं भले वो शरीर का व्यायाम है लेकिन वो करने वाली भी तो आत्मा ही है ना, शरीर अपने आप थोड़ी करेगा, डेड बॉडी थोड़ी कोई प्राणायाम करेगा या हठ योग करेगा, आत्मा उसमें है तब वो हठ योग भी करेगा। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है, तो ये बातें भी जो समझदार है वो ही समझ सकते हैं। तो इसलिए आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाबा बार बार यही जोर देते हैं, समझदार बनना है। ये बातें भी जो समझदार है वो ही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो, बाबा अभी सेवा की बात कह रहे हैं, ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बने हैं। हम जिनकी पूजा करते हैं वो हमारा ही पूज्य स्वरूप है, ये मनुष्य कैसे समझे? बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करो, कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बने हैं। पूज्य है नई दुनिया में और पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य कहेंगे और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है, कोई भी अपने आप को पावन नहीं कहला सकता है कलयुग में, यहाँ तो सब पतित है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है भले वो पवित्र रहता हो, पूरा पक्का ब्रह्मचारी हो, परंतु बाबा कहते फिर भी वो पावन नहीं है। क्यों? क्योंकि विकार से पैदा होते, हर एक शरीर की पैदाइश तो विकार से ही है। वहां ही श्रेष्ठ गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी, अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, कैसा? संपूर्ण श्रेष्ठाचारी लक्ष्मी नारायण जैसा। अब इसमें मेहनत है, बाबा मम्मा ने कितनी मेहनत की, तो बाबा कहते इसमें मेहनत है। तो इसमें मुख्य बात है याद की, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं, अब क्या शिकायत करते हैं बाबा को, सभी कहते हैं बाबा याद में रहना बड़ा मुश्किल है, हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। बच्चे बाबा को कहते हैं हम जितना चाहते हैं हम बाबा की याद में रहें, हम याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अटेंशन जाएगा ना कि हमको याद में रहना। अगर चार्ट सच्चाई से लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो, मन मना भव का अर्थ क्या है? मन को मेरे में लगाओ, मन मना, मना मना मेरे में, भव मना रखो, मन को मेरे में रखो। तो बाबा कहते हैं तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रहती अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाबा को पत्र लिखते थे, कई प्रश्न पूछते थे पत्रों में भी, तो बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, हाँ कुछ न कुछ बाबा उनको थोड़ी बातें सुना देते थे, प्रश्न पूछते थे पत्रों में तो कुछ न कुछ कह देते लिख लेते। परंतु बाप कहते हैं मेरा काम है पतित से पावन बनाना। कई लौकिक बातें भी बाबा को लिखते थे, हाँ धंधे की बातें भी बाबा को लिखते थे, बाबा से राय लेते थे तो बाबा लिख देते थे, कुछ राय उनको देते थे, लेकिन मुख्य पाठ तो बाबा का कोई ये नहीं है धंधे की बातें सुनाना, ये सुनाना, वो सुनाना। हाँ, मुझे याद है एक बार अब एक बार दादा से जिसे मिल रहे थे इंडिविजुअल, तो बाबा से उसने पूछ लिया, बाबा मैं दुकान खोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन से दिन खोलूं, कब खोलूं। तो बाबा मुस्कुराए, अभी क्या जवाब दिया होगा, अब एक बार दादा से पूछने लगा। बाबा ने कहा वो तो ज्योतिषी से जाके पूछो क्योंकि वो आपको मुहूर्त बताएगा। तो बाबा तो भृगु ऋषि है ना, वो तो भृगु तीनों कालों को जानते हैं, तो बाबा तो कहेंगे मैं पतित से पावन कैसे बना वो मैं युक्ति बताता हूँ, बाकी तो दुनिया वाले भी बहुत बताएंगे आपको कि कभी मुहूर्त निकालना है, कभी दुकान का उद्घाटन करना है। तो देखो बाबा कैसे हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, तो वो तो ज्योतिषियों का पाठ है, पर भगवान का पाठ क्या है, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं, बाबा करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं। हाँ, बाबा को पूछते, बाबा मैं धंधा करूँ, नौकरी करूँ, ये करूँ, तो बताए ना बाबा रमेश भाई और ब्रजमोहन भाई की बहुत सुंदर बात है। रमेश भाई को बाबा ने कहा कि हाँ धंधा भले करो अच्छा है, तो ब्रजमोहन भाई भी धंधा करने लगा था, बाबा ने उसको कहा तुम धंधा नहीं करो तुम नौकरी करो। तो देखो नौकरी की तो कैसे सहज हो उससे छूट गए, और रमेश भाई तो सारा अकाउंट संभालने लगे, तो उनका तो फिर यही अकाउंट्स का ही मुख्य कार्य बाबा ने उनको दिया। तो देखो हर एक को बाबा इंडिविजुअल भी राय देते थे, ऐसे नहीं कि नहीं देते थे, लेकिन मुख्य कार्य तो बाबा का यही है ना, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं मुझे तो बुलाते ही हो इसलिए कि पति से पावन बनाओ, इसलिए बुलाया भगवान को। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वो वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है, 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, सारी दुनिया कांटों का जंगल है, इसीलिए बाबा बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उनके आगे कांटे जाकर कहते हैं, अब कांटे बन गए ये सारी दुनिया, तो वो कांटे देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं, उनके आगे कांटे जाकर कहते हैं आप तो सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी कपटी हैं। आरती में यही तो गाते ना, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी कपटी गंदा बंदा पता नहीं क्या क्या कहते अपने लिए, और आप ऊंच हो। तो बाबा कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का, बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। तो मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भगवान को कोई न कोई रूप में आना है। अभी भी समझते ना भगवान, अभी भी महाभारत लड़ाई जैसे सामने खड़ी है, अंत सामने है, तो भगवान कोई न कोई रूप में होगा या आना है, कोई न कोई रूप में आना है। भागी रथ पर विराजमान हो आना है, वो तो दिखाते कल की अवतार आता है घोड़े पर सवार होकर के, सफेद घोड़ा सफेद वस्त्रधारी घोड़े पर, वास्तव में तो शिव बाबा आते हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ में, फिर वो घोड़ा दिखा दिया। तो बाबा कहते भागी रथ पर विराजमान हो आना है, भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है, जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। हाँ, बाबा ने उस आत्मा को जब उसने कहा ना कब मुहूर्त निकालूं, तो बाबा ने ये तो कहा कि ज्योतिषी से पूछो, लेकिन साथ में बाबा ने क्या ऐड कर दिया कि बाबा की याद में जो कुछ भी करोगे वो सफल होगा, बाबा की याद में। तो अगर उद्घाटन भी करना है तो बाबा की याद में ही करना है, ऐसे नहीं हंसी मजाक करके करना है, पर बाबा की याद में करो तो वो मुहूर्त सही होगा। चाहे ऐसे नहीं कि समय ये इतने बजे ही करना है, ऐसी बात नहीं है, बाबा की याद में हो। तो देखो बाबा की याद में हर घड़ी श्रेष्ठ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना पड़े, तो बाप को ही रचयिता कहा जाता है। बाप को रचयिता कहा जाता है तो तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, अब ये और गहरी बात, अब कर्म भोग का हिसाब किताब है, कोई शरीर पर भी रोग है तो किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। सब ने भोगा है, किसने नहीं भोगा है, हमारी दादियों ने कोई कम हिसाब किताब चुप तो किया, लेकिन कैसे खुशी खुशी, ऐसे नहीं दुखी हो करके, कुछ भी हो वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, क्योंकि सब हिसाब किताब यही चुकतू करना है, धर्मराजपुरी की सजाओं से तो नहीं चुकतू करना है ना। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं, हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो, बाबा से कहते वर्षा दो, क्या वर्षा पाना चाहते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता भी कहा जाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान से ना, तो ज्ञान दाता तो परमात्मा है, वही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान देता है, उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था परंतु कब दिया था, किसने दिया था, ये किसको भी पता नहीं, वो तो समझ लेते श्री कृष्ण भगवान ने दिया था, द्वापर अंत में दिया था, इसलिए बाबा कहते किसने दिया था कब दिया था ये नहीं जानते। सारा मुंझारा इसमें है, भगवान ने गीता ज्ञान दिया पर कब दिया, क्या दिया, किसने दिया, सारा मुंझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं, अभी अर्जुन को ज्ञान देने थोड़ी भगवान परमधाम से आएगा, तो हम सब आत्माओं को देते हैं, जो उठे सो अर्जुन, ये भी किसको पता नहीं किसको ज्ञान दिया। अभी ये ब्रह्मा बैठा है, अभी देखो बाबा ने क्या बात सुनाई, अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, बाबा की बोली चलती शिव बाबा ब्रह्मा तन में, अब ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था। पहले तो नहीं पता था, बाबा को भी भक्ति में थे, नारायण की तो पूजा करते थे, ये थोड़ी पता था कि मैं ही नारायण था। तो ये ब्रह्मा बैठे हैं, उनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर हमने 84 जन्म भोगे, ये इनकी आत्मा को पता चला। अब ये है नंबर वन में, शिव बाबा ने इनको बताया तुम ही नंबर वन में हो। बाबा बतलाते हैं, हाँ जब बाबा ने इनको कहा कि तुम ही श्री नारायण की आत्मा हो, तो बाबा बतलाते हैं कि मेरी तो आंखें खुल गई, ब्रह्मा बाबा की तो आंखें खुल गई, मैं नारायण था, मैं तो इनकी पूजा करता था। तो ये जो जब वरदान जब विष्णु किया, इनको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, तो विष्णु ने उनको क्या वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी वही हो। तो देखो उनका मैं वही हूँ, हाँ मैं ही वो हूँ, मैं तो उनकी पूजा करता था। तो बाबा कहते मेरी तो आंखें खुल गई, तुम भी कहेंगे, अब बताओ हम भी कहेंगे, खाली ब्रह्मा बाबा की आंखें नहीं खुली, तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें खुल गई, जिन देवताओं की हम पूजा करते थे वो ही थे, आंखें खुल गई ना सबकी, कौन सी आंखें, ये तो खुली हुई थी, कौन सी आंख बंद थी, तीसरा नेत्र बंद था, तो बाबा ने आकर के तीसरा नेत्र दिया और वो आंखें खुल गई कि सचमुच हम ही ये थे। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें खुल गई, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, सब मिल गया है ज्ञान, मैं जो हूं जैसा हूं मेरी तो आंखें खुल गई है। हम भी ऐसे ही कहेंगे मैं क्या हूं, आप उसको क्या क्या समझते थे और बाबा ने क्या समझ दिया। मैं जो हूं जैसा हूं मेरी तो आंखें खुल गई है, कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने देह को समझ बैठे। आत्मा हूं मैं ये पहले समझना, लेकिन आत्मा को भूलकर खुद को देह समझ बैठे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। गीता में भी है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा का न जन्म है न मरण है, मैं ही वो आत्मा हूं ना, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, फिर भी देह अभिमान में आ गए कि शरीर ही समझ लिया खुद को। तो फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो, तो अंदर में घोटते रहो, पीसते रहो, महीन बनाते रहो, अपने को ये घोटते रहो अंदर में कि मैं आत्मा हूं। आत्मा न समझने से ही बाप को भूल जाते हैं। बाबा क्यों याद नहीं आता है? क्योंकि अपने को आत्मा ही नहीं भूल समझते, भूल भूल जाते हैं, तो बाबा कैसे याद रहेगा? हाँ, तो बाबा हाँ। तो बाबा कहते हैं तो फील करते हो बरोबर, हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं, याद भूल जाती है, वे संकल्प चलते मना घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। तो मेहनत करनी है, यहां बैठो तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। तो बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं, आधा कल्प तुमने हमको याद किया है, तो कोई भी बात सामने आती है, दुनिया में भी कहते हैं कोई भी बात आती है, कोई प्रॉब्लम आया, कुछ ऐसी बात हो गई, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, हे राम, ओ गॉड, ओ गॉड, कोई समस्या आ गई तो भगवान को याद करते उस समय, हाय राम। परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता नहीं है। तुमको तो सिद्ध कर बताना है कि ज्ञान का सागर पति पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। शिव जयंती में शिव बाबा का भी जन्मदिन, ब्रह्मा का भी जन्मदिन, विष्णु का भी जन्मदिन, शंकर का भी जन्मदिन, तीनों इकट्ठा है। तीनों का जन्म इकट्ठा है, सिर्फ जब शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं पर ब्रह्मा ने क्या किया, उनकी क्यों नहीं साथ में जयंती मनाते? लौकिक पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोक हो जाता है। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं, जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं तो क्या ठहरा? क्या कहा बाबा ने? क्या ठहरा वो? बेसमझ। फिर अभी बाबा कहते वो अज्ञानी ठहरा, अज्ञानी ठहरा। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से ही दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते इसलिए उनकी हॉलिडे भी नहीं, हॉलिडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आए ही हैं सबकी ज्योति जगाने, है ना। दिवाली है ना, आज दिवाली शुरू हुई है धनतेरस है, तो बाबा क्यों आए हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, ये बत्तियां भी किसकी यादगार है, आत्मा की ज्योति जगती है। अभी तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। भले दिवाली पर कितने भाषण करो पर नहीं समझेंगे कि इसका मतलब क्या। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, बहुत दुनिया में रिद्धि सिद्धि है, बात मत पूछो, तो वो बहुत तंग करते हैं, क्या क्या उल्टा काला जादू चलाते हैं, तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें ईवल सोल है, बहुत दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिद्धि सिद्धि से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा है विद्धि द्वारा सिद्धि, रिद्धि से वृद्धि से सिद्धि नहीं, विधि से सिद्धि। बाप कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, बाप तो सीधी बात बताते हैं, इसलिए यहाँ कह के देखो आप चमत्कार दिखाते हो, हम कहते हैं यहाँ कोई चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ तो सीधा पुरुषार्थ करना है, कोई चमत्कार से थोड़ी कुछ होगा। तो बाबा कहते हैं बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तो मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, कितनी गहरी बातें बाबा ने समझाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हों की बातों में तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, बस यही काम करना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। वरदान, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, धर्म युद्ध है ना, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कर्म क्षेत्र पर तो है पर धर्म युद्ध है, तो अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है, धर्म युद्ध माना माया से लड़ाई, तो उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपके मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कशन करने से अपने मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, हम खाली आर्ग्यू करते हैं, मतभेद में आते हैं या भेदभाव हो जाता है, तो उससे कोई सिद्ध नहीं होता है ज्ञान। तो अपने क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपने मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। धारणा मूर्त से आप किसी को समझाओ तो शांत करा सकते हो, उनको कोई प्रश्न नहीं उठेंगे। स्लोगन, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अब इसके पीछे मम्मा की दो छोटी सी उंगलियां हैं, वो भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहली उंगली है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। तो पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है, जब इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल करके धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर धर्म पिता ने अपने अपने समय पर अपनी बात कही है, तो हर धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है। हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी वो न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उसने योग उससे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, वो धर्म पिताओं की आत्माएं भी आएंगी। परमात्मा को पहचान कर उनसे योग लगाना कैसे है वो उनको समझ आएगी, उसी आधार से फिर अपने धर्म की स्थापना द्वापुर में करेंगे, भले वो सत्य त्रेता में नहीं आएंगे। तो मामा कहती है, इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए। आजकल तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, वर्ल्ड योगा डे, ये भी कह रहे हैं। तो बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हम भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिलती है। अब दूसरी मामा की छोटी मुरली है, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को ही अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता है। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजपा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो एक बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो तो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस ये याद आने से बच्चे की वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हो, उस याद से ही कर्मातीत बनना है। तो इसे नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का अर्थ मम्मा ने बताया। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कई सूचनाएं हैं, कृपया सब ये सूचनाएं सुन करके जाएंगे। तो जिस प्रकार से हर साल दीपावली मनाते थे तो उस रूप से तो अभी नहीं मनाएंगे, लेकिन 20 तारीख मुरली क्लास के बाद, यानी परसों 20 तारीख मुरली क्लास के बाद पांडव भवन में ब्रिज मोहन भाई साहब के निमित्त भोग लगाया जाएगा और 20 तारीख को ही शांति वन में 11:30 बजे ब्रिज मोहन भाई साहब के निमित्त भोग लगाया जाएगा। वो दिवाली का भी दिन है, परंतु ब्रिज मोहन भाई को विशेष भोग नीचे लगाएंगे उस दिन और सवेरे यहाँ लगाएंगे 20 तारीख। और फिर 21 तारीख को दीपावली के निमित्त पांडव भवन में मुरली क्लास के बाद भोग रहेगा। यहाँ 21 तारीख को दिवाली का भोग लगाएंगे और दिन में 11:30 बजे शांति वन में दीपावली के निमित्त भोग लगेगा। बस भोग लगेगा 20 तारीख को मुरली के बाद पांडव भवन में और 21 तारीख को, और 20 तारीख को नीचे भी और 21 तारीख को ऊपर भी होगा और फिर 11:30 बजे नीचे भी भोग लगेगा। तो ये भोग का ही कार्यक्रम है 18, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। ओम शांति।